हर मेरी कामयाबी तेरी अता से है,
हर मेरी कामयाबी तेरी अता से है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबीयीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन वेलकम कहते हैं बुज़ुर्गों के मदनी चैनल में और हमारा प्रोग्राम है नतीजा क्या निकला। आज हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और यूके के अंदर काफ़ी उन्होंने हमारी हेल्प भी की है दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट में भी। आज इंशाल्लाह वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम भी आपको बताएंगे, उनकी डेजिग्नेशन क्या है और किस फील्ड से है और डेफिनेटली हर एक को इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद कहाँ भी मेरे आका तक दुरूद पहुँचता है। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब करीम ने कुदरत अता की है जो किसी को भी अता नहीं की। ये याद रखिएगा, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम में पढ़ें, ग्राउंड में पढ़ें, घर में पढ़ें, कमरे में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें या स्कूल में पढ़ें, आपका दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो अब कितना शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ पढ़ना चाहिए ये हमें खुद गौर करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमारे साथ जो शख्सियत है अब बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, कहाँ से ताल्लुक है, कहाँ पैदाइश हुई ये भी बताते हैं। नज़ीर यूसुफ मारफानी साहब, मेमन कम्यूनिटी के अंदर एक ख़ानदान है जो मारफानी
जी,
ऐसे ही तो वो माशाल्लाह ये उनसे बिलोंग करते हैं। हुजूर आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में माशाल्लाह। और क्या है, ये मेल नर्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सपोर्ट करते हैं जब भी हमारे हेल्थ चेक्स होते हैं, जब भी हमें नीड होती है। डेफिनेटली एक बिग इशू है यूके के अंदर हेल्थ चेक्स के हवाले से, हफ्तों लोगों को वेट करना पड़ता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे एफजीआरएफ के डिपार्टमेंट ने एक बड़ा यूनिक काम किया है कि फ्राइडे जुमे के बाद मसाजिद के बाहर फ्री हेल्थ चेक्स लगाए जाते हैं और उसमें बाकायदा बीएमआई टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, वेट है और उसके मुताबिक फिर उनको गाइडलाइन दी जाती है। ओवर वेट है, ब्लड प्रेशर इशू है, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट साइलेंट किलर जो है वो ब्लड प्रेशर है। तो माशाल्लाह ये काफी दफा इन्होंने हमें सपोर्ट किए, सिर्फ अपने शहर लेस्टर में नहीं बल्कि हमें जहां भी जरूरत होती है, या क्योंकि माशाल्लाह ये फील्ड से भी हैं तो अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। लेकिन एक वाकया पहले हम सुनाते हैं, और क्योंकि उमूमन ये होता है कि खास तौर पर जो बुजुर्ग होते हैं वो छोटी छोटी सी बातों पर जो है ना फौरन माइंड कर जाते हैं, फौरन ले लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं किसी शेर को, लाइन को च्यूटी कह दूं कि तुम तो च्यूटी हो, आप मुझे बताओ, तो क्या मेरे च्यूटी कहने से क्या वो शेर च्यूटी में बदल जाएगा, उसकी आदतें ख़त्म हो जाएंगी? शेर शेर ही होता है, च्यूटी च्यूटी होती है, बंदर बंदर होता है, हाथी हाथी होता है। हाथी को बंदर कहने से हाथी बंदर नहीं बन जाता है। जब किसी के कहने से कुछ नहीं होता तो आप फिर बुरा क्यों मानते हैं? कोई अगर आपको कुछ कह भी देता है, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, यकीन करें आप जैसा कोई भी नहीं है। अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखें, अल्लाह करीम ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा बनाया है। अब जैसे हमारे ये मारफानी साहब हैं तो ये जैसे भी, इनका दूसरा नहीं है कोई भी, तो ये यूनिक हुए या नहीं हुए, अल्लाह पाक ने हर एक को यूनिक बनाया है। सिर्फ बात यह है कि यकीन होना चाहिए, खुद से ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन बेहतर यह है कि अच्छों की तलाश जारी रखनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। उमन जब एज बढ़ती है ना तो बात बात पे नाराज होने का एक फैक्टर जो है वो नजर आता है। तो ये एक छोटी सी अर्ज थी, खालिद भाई कुछ फरमाएंगे इस बारे में?
जी बिल्कुल शाह जी, इंसान को अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए और खुद एतमादी होगी तो ही इंसान आगे डिलीवर कर सकेगा किसी भी काम के लिए, ख्वाह वो दीनी हो या दुनियावी हो। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत जरूरी है। बल्कि जितनी भी चीजें हैं ना उसका ताल्लुक अगर देखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ज़ात से शुरू होगा। پہلے آپ خود اس قابل ہوں گے تو ہی آگے سلسلہ چل پڑے گا. جیسے اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں, روزہ ہے, ایک بندے کے اندر طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو اسلام اس کو معافی دیتا ہے, تو صحت مند اس پر روزہ ہے, حج ہے صحت مند اس پر ہے, زکوٰۃ جو بندہ صاحب نصاب اسی پر ہے, تو مطلب اس کے اندر اتنی خود ابلٹی ہو کہ ہی کین افورڈ اینڈ ہی کین ڈو اٹ. تو یہ انسان جب اپنے اوپر بلیو رکھتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ رستے اس کے لیے خود کشادہ کر دیتا ہے. اور اس کی کئی اگزامپلز ہیں. اور جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو ایک انگلش کی کتاب تھی اور اس میں ایک کہانی تھی سیلف کانفیڈینس کو ابھارنے کے لیے, کہ ایک چڑیا تھی اور اس نے درخت کے اوپر گھونسلا ڈالا ہوا تھا اور اس میں اس کے بچے تھے. تو وہ خود تو اڑ لیتی تھی لیکن بچوں کو بھی اڑنا نہیں آتا تھا, تو اس نے جان بوجھ کر ان کو باہر پھینک دیا. اب جب باہر پھینکا تھا بچے اپنی جان بچانے کے لیے نا
پھڑ پھڑائے
انہیں پتا چلا ہم تو اڑ سکتے ہیں, تو انہوں نے اڑنا شروع کر دیا, اڑ اڑ کر دوسرے درخت پہ چلے گئے. نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہوا تھا کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن انسان اپنے آپ کو وہ خوبیوں پہچان نہیں پاتا, ورنہ اگر وہ پہچان جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو جس طرح وہ چڑیا نے اپنے پرندوں کو اپنی خود اعتمادی کا احساس دلانے کے لیے ان کو گھونسلے سے باہر نکالا, تو اسی طرح ہمیں اپنی خود اعتمادی کو پہچاننے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا.
جی ماشاء اللہ, بڑی کامیابی کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں ملتی ہے, ہمیشہ اس کمفرٹ زون سے باہر آنے پر ہی بڑی کامیابی ملتی ہے. بہرحال چلتے ہیں ہمارے نذیر بھائی کی طرف اور انشاءاللہ آج کچھ ان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں اور پھر رزلٹ کیا نکلا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. حضور ویلکم کہتے ہیں آپ کو. آپ کی پیدائش کہاں سے ہے, ایجوکیشن کیا, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا انشاءاللہ. اور پھر جو فیلڈ آپ نے میل نرس کی جو ہے, اور لازم بات ہے انسانیت کی خدمت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور اس فیلڈ کے اندر اسی طریقے سے ہاسپٹلس کے اندر کام کرنا, لوگوں کی جان بچانا, بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سیکھنے کے لیے بھی ملتے ہیں, عبرت کے واقعات بھی ہوتے ہیں, تو اس فیلڈ کو چنا کیوں, تھوڑا اس کے حوالے سے بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیدائش انڈیا میں ہوئی ہے, بھاونگر سٹی کے اندر.
ٹھیک ہے, یہ تو امیر علیہ سنت سے بھی کچھ نسبت.
جی جی وہی یہ گئی جامنگر جوناگڑھ کے آجو بازو میں.
اچھا 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 ماشاء اللہ.
میں انڈیا میں خود کا کاروبار کر رہا تھا.
اچھا,
آٹھویں کلاس سے, اور الحمدللہ اللہ نے اس ٹائم پہ اتنا دیا کہ اس ٹائم پہ بھی میں نے خود کے اپنے گھر خریدے, ممی پاپا کو حج پڑھوائے, بہنوں کی شادیاں کی
ماشاءاللہ,
اور پھر بھائی کو بھی بزنس کروایا, دو انکل تھے ان کو بھی بزنس سیٹ کر کے دیا اسی ٹائم پہ. اور پھر میں یو کے کی طرف آیا, اور یہاں آ کے پھر میں نے جاب سٹارٹ کی, کیونکہ سٹارٹنگ میں تو بزنس مشکل ہے اور میں اکیلا بندہ تھا تو تھوڑا ہارڈ لگ رہا تھا. اور پھر میں یو کے میں آیا تو میں کام کیا انجینئرنگ کمپنی میں, اور میں میرے کو وہاں بھی لوگوں نے ٹریننگ دی, اور میں وہاں پہ ڈیولپر کے عہدے تک پہنچ گیا تھا.
اچھا,
میں جاب ڈیولپ کرتا تھا کیٹرپیلر کے لیے, کماستو, وولو, پارٹیکس, جو ارتھ موونگ اکوپمنٹ بناتے ہیں ان کی جابیں میں ڈیولپ کرتا تھا لیسٹر میں, کے بی انجینئرنگ میں. اور اس کے بعد پھر میرے گھر پہ بیٹی ہوئی تو تھوڑا مسئلہ ہو گیا ٹائمنگ کا, کیونکہ فیملی بھی انڈیا سے آئی تھی, وہ بھی انگلش نہیں بول رہے تھے, وہ ادھر آئے تھے ان کو اچھا نہیں لگا, وہ چلے گئے اور میں اکیلا تھا, تو اس حساب سے تھوڑا کام پہ پرابلم ہونے لگا. تو اس کے بعد میرے جو فرینڈ تھے نا وہ کیئر کمپنی میں کام کرتے تھے, تو وہاں سے میرے کو ایک گائیڈنس ملا, تو میں نے وہ جاب اسٹارٹ کیا اور میرے کو اچھا لگا. اس کے بعد میں یہ فیلڈ میں آ گیا, کمیونٹی فیلڈ میں 2011 سے آیا. اسٹارٹنگ میں میں کام اسٹارٹ کیا اینڈ آف لائف, جو پیشنٹ تھے نا اس کے ساتھ میں کام کرتا تھا.
ٹھیک ہے,
اور
یعنی جن کے آخری وقت ہوتے ہوتا تھا,
اللہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا. اور اسی ٹائم پہ میرے کو جو دعا دیتے تھے, بلیسنگ کرتے تھے, تب سے یہ کام میرے کو دل کو اچھا لگنے لگا.
اللہ,
میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کو پیسے تو مل رہے ہیں لیکن یہ دعا بھی دے رہی ہے, اور دعا پیسے سے نہیں ملتی.
اللہ,
تب سے یہ کام میں میں زیادہ انوالو ہونے لگا. اس کے بعد پھر میں نے ہاسپٹل میں جاب ملی تو میں ہاسپٹل جانے لگا, تو اس میں ٹائم یہ تھا صبح 7 سے لے کے رات کے 7 بجے تک, کبھی رات کے 9 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا, اور ایک ہی وارڈ میں تھا, اور وہ ایک ہی وارڈ میں پیشنٹ کی خدمت کرتے تھے. اور اس کے بعد اپرچونیٹی ملی تو میں کمیونٹی سروس میں جوائنٹ ہوا.
ٹھیک,
تو وہاں پہ میرا کام تھا صبح 8 بجے جانا, شام کے 6 بجے تک, 7 days a week.
7 days کرتے تھے,
7 days کام کرتا تھا. اور اپنے کو لسٹ ملتا ہے ایوری ڈے کا کہ آپ کو آج 25 بندے 20 بندے دیکھنے ہیں اینی ہاؤ, تو میں وہ جا کے ان کی جو جو ریکوائرمنٹ تھی اس حساب سے ان کو میں ہیلپ کر رہا تھا. तो मेरे को ये लगा कि मेरे को पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं जो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन दुआ साथ में मिल रही है, तो पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्ट वो मायने रखती है, क्योंकि दुआ कोई ऐसे पैसे से नहीं।
कितने अरसे से अब आप इस फील्ड में?
मैं 2011 से ये फील्ड में हूँ,
यानी कमो बेश 14 साल हो रहे हैं।
जी जी
14 ईयर, यानी बहुत बड़ा ट्विस्ट है खालिद भाई।
बिल्कुल ऐसे
मनीष आगे नाजिर, आज वो कहते हैं ना एक घर से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, कैसे रहेंगे मौला, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक बिजनेस से इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग से टोटल ओपोजिट चेंज, यानी कि मेल नर्स यानी केयरिंग के सेक्टर में आना और फिर उसी में ही लास्ट 14 ईयर से रहना, सो इज़ अ बिग चेंज। और बिग चेंज की वजह अब ये क्या है, नतीजा ये निकला कि बाकी दुआएं जो होती है ना, वो जिनको दुआएं देने वाले हो ना और दुआएं समेटने वाले हो, बड़े खुशकिस्मत होते हैं। दुआएं वो होती जो दिल से दुआ निकले ना, वो फिर बंदे की ज़िंदगी और तकदीरें बदल देती हैं। कह रहे हैं कि इतना बिजनेस किया, सब कुछ किया, फिर यहाँ पर आके इंजीनियरिंग भी, आपको पता है कि लोग कहते हैं इंजीनियर बनूँ इंजीनियर बनूँ, लेकिन ये लास्ट 14 ईयर से जब इन्होंने अपना ये प्रोफेशन चेंज किया तो अब माशाल्लाह कहते हैं कि एक तो दुआ बहुत मिलती है और सुकून भी बहुत है।
जी शाह जी, इससे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो ये कि हौसला अफजाई जो है ना, ये इंसान को तरक्की करने में मदद देती है।
ठीक, सही।
तरक्की का जो सफ़र है उसके अंदर देखे थे इनको, जो लोगों ने दुआएं दी, ठीक है, अप्रिशिएट करते थे, तो फिर इनका हौसला बढ़ता गया, कैसे वो जो ना वो केयरर से मेल नर्स बन गए और क्यों ऐसे तरक्की करते गए। दूसरी ये चीज़ पता चली कि इंसान को हमेशा अपनी जात के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए,
ठीक,
कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह नेकियों का भी मामला है, मुसलमान ये नेकियों का हरीस होता है, लिहाजा उसको अपनी नेकियों पर कहीं भी मुतमिन नहीं होना चाहिए कि मैंने इनाफ नेकियां कर ली हैं, अपना सिलसिला नेकियों और बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। जिस तरह कि बिजनेस मैन अपने बिजनेस बढ़ाता है ना, तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी नेकियों का सिलसिला बढ़ाता रहे, अपने नेक अमाल में कसरत करता रहे। मैंने सदका जारिया कर दिया, ठीक है, वो नेकियों का मीटर चल गया, दुरूद भी पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी नेकियों का मीटर चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ वाजिबात पूरे करने के साथ जितना हो सके उसको अपनी नेकियों का सिलसिला बढ़ाना चाहिए।
ओके, माशाल्लाह।
ये हमें नज़ीर यूसुफ मारफानी की जो तरक्की का सफर, उसे नतीजा में ये निकलता
है। चेंज होने से बंदे को घबराना नहीं चाहिए, चेंज हो गया कैसे जिंदगी होगी क्या होगा, आपके सामने इज अ बिग चेंज इन देयर लाइफ, मुल्क चेंज हो गया, प्रोफेशन चेंज हो गया, एजुकेशन सेक्टर चेंज हो गया, सारी चीज़ें, आपका हौसला आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। अच्छा हुजूर, ये तो बताएं फिर दावत इस्लामी और फैजान मदीना आना ये किस तरीके से शुरू हुआ और क्या अभी क्या आप कर रहे हैं?
2019 में थोड़ा डाउनफॉल आया था लाइफ में, तो उसी टाइम पे मेरा दोस्त था वो फैजान मदीना लेस्टर में ले गया था, सेंट मैथ्यूज में, उससे पहले मैंने कभी फैजान मदीना का नाम भी नहीं सुना था। और वहाँ पे मैं एवरी थर्सडे को जो इस्तीमा होता है हफ्तावारी, उसमें जाना स्टार्ट किया मैंने। और उसी टाइम पे वो थोड़ा वहाँ पे जो लंगर होता था ना, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, तो वहाँ मैंने हेल्प करना स्टार्ट किया। और फिर वहाँ से मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी कि आपको यहाँ पे बैठना है एवरी थर्सडे को और खिलाना है,
ठीक हो,
तो मेरे को वो भी अच्छा लगने लगा, वो मेरे को सुकून मिलता था, तो मैं एवरी थर्सडे को उधर जाता था। तो अभी 2019 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक समझो ना कि वॉलंटरी में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि नहीं मेरे को यहाँ पे जाना है, खाना बनाने में हेल्प करनी है, खाना खिलाना है, सब करके फिर वापस ईशा की नमाज पढ़ के घर पे जाना है। और जब मैं नहीं जाता तो मेरे को मज़ा नहीं आती, ऐसा कुछ होता है कि कुछ
समथिंग इज मिसिंग। माशाल्लाह, इनको उस एक सुकून मुयसर होता था कि जब तक वो लंगर रजविया में शामिल न हो लें, मुसलमानों को खिदमत ना कर लें, आशिकान रसूल जो दावत इस्लामी का हफ्ता बार इस्मा में शरीक हुए हैं, उनको जब तक जना वो खाना ना खिला सके, इनके वो तशफ़ी नहीं होती थी। और जिस दिन वो अगर ना पार्टिसिपेट कर सके तो समथिंग वाज मिसिंग। तो ये देखें हदीस पाक की एक हमें बरकत ज़ाहिर होती है कि वाकई मुसलमानों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है।
इस्तेकामत फोकल करामत, अब इतने सालों से एक ही, लोग कहते हैं यार दिन नहीं लगता है, वो बार बार कुछ चेंजिंग के लिए भाग रहे होते हैं, तो वाकई अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए नेकियों की तो उसमें फिर इस्तेकामत जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। तो एक कितना अरसा हो गया हुजूर आपको इस ये संभाले हुए शोभा?
2019 से प्रॉपर
2020 से, यानी अब 5-6 साल कम हो बेश हो रहे हैं
जी।
और आप उसी को, और लाजिम आते लंगर खाना खिलाना ये इस्लाम की एक हुसन में से है, ब्यूटी में से है। तो इसलिए अगर आप भी कोई ना कोई, असल बात ये है कि नतीजा ये निकला, कोई ना कोई जब भी हम प्रोग्राम देखते हैं किसी ना किसी तरह कामयाबी के पीछे जो है वो रिलीजियस बैकग्राउंड या रिलीजियस सपोर्ट हो रहा, ये बड़ा ज़रूरी होता है, फिर आपको कामयाबी दिखती है। आपने ऐसा नहीं देखा कि बंदा कामयाब है और वो बाज़ाहिर आपको कामयाब दिखेगा लेकिन ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। अब माशाल्लाह ये आपको दिख रहे हैं, ये भी हैं, और आपने पिछली एपिसोड्स में भी देखे कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में बरकत भी दी है, वरना बंदा कोलैप्स हो जाता है कि मैं इंजीनियर से मैं इस नर्सिंग के शोबे में आऊँ, पता नहीं कितना तो पढ़ना पड़ेगा।
ऐसे ही
फिर इनको किस तरीके से जो है वो अल्लाह पाक ने इनके लिए रास्ते खोले। तो जो इसमें जो डिफ़िकल्टीज आई उसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं, कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहें और फिर अल्लाह की रहमत से आपको इस्तेकामत मिली हो, कोई वाकया अपनी ज़िंदगी का?
वैसे तो जब से दावत इस्लामी जॉइंट किया है, स्लोली पहले स्टार्टिंग में दिक्कत हुई कि वो पूरा शेड्यूल चेंज हो रहा था, टाइम काम
से निकालना है सबसे बड़ा
मसला। हाँ, टाइम नहीं मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब से इसमें जितना इन्वॉल्व होने लगा, अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी है। मेरे को सपोज हेल्प करने जाना है दावत इस्लामी में, वहाँ पर ज़रूरत है, अल्लाह कहीं ना कहीं से वो टाइम निकाल देता है। अल्लाह ने इतनी एक काम में बरकत दी है कि मैं अपना काम करके भी दावत इस्लामी के लिए टाइम देता हूँ और उसमें मेरे को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और दूसरा कि दावत इस्लामी जब से ज्वाइंट की है तब से मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। पहले मेरे सुन्नत नहीं थी और जीन्स वगैरह पहनता था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस्लामिक माहौल में, ये जो दावत इस्लामी के माहौल में आ गया, कम्प्लीटली चेंज हो गया। घर में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ इनका,
ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती?
नहीं, कुछ नहीं।
लोग ऐसे ही ज़हनी तौर पे होते हैं ये हो जाएगा वो हाँ, हो जाएगा।
वो कुछ नहीं है, वो स्टार्टिंग में एक वीक दो वीक लगता है, उसके बाद ऐसा आदमी आपको उस हिसाब से नहीं देखता। स्टार्टिंग में होता है चलो ये चेंज हो गया, लेकिन उसके बाद तो
कोई हेजिटेशन फील नहीं होती।
और ये लिबास में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि दूसरे लोग भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लिबास के हिसाब से।
डेफिनेटली वी आर इन नॉन मुस्लिम कंट्री, एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुसलमान 5% हैं, अपने इस्लामी तशख्स को बरकरार रखना, इस हलिये के अंदर आना जाना और फिर एक अच्छा शहरी के एतवार से होना, तो ये समझता हूँ कि ये भी अपने हिसाब से एक बरकत है।
बिल्कुल ऐसी। नज़ीर यूसुफ भाई, आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट हो जिसको आप शेयर करना चाहें?
डाउनफुल में जब जिंदगी में आया तब से दावत इस्लामी का दामन थामा, तब से मेरी लाइफ बेहतर हो गई, तो मेरे को वही सुकून और प्राउड फील हो रहा है कि अल्लाह ने ये मेरे को रास्ता सही दिखा दिया कि दावत इस्लामी इधर है, वहां से कम्प्लीटली लाइफ चेंज हो गई, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
माशाल्लाह जी, देखिए नज़ीर भाई, ये एक नेचर है, अगर इंसान अपना लाइफ स्टाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उसी तरह का लाइफस्टाइल बना ले तो कुदरती तौर पर उसको सुकून और कंफर्ट फील होगा। तो गोया कि अब आपने अपना जो लाइफस्टाइल है उसी तरह बाशरा, दाढ़ी, लिबास, 5 वक्त नमाज, अल्लाह के रस्ते में सफ़र करना, तो ये चीज़ें आपने अपनाई और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने आपको सुकून फराहम किया। और नो डाउट कि जितने भी आशिकान रसूल इस वक्त मदनी चैनल देख रहे हैं, अगर उनका ज़िंदगी का जो अंदाज है, मेयार ज़िंदगी है, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हट कर आए, तो आप अपने उस लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को नबी करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, आप उसका जायका, उसका टेस्ट, उसकी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी आप अपने दिल में फील करेंगे। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को अपनाने में ही कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का उस्वा हसना ही बेहतरीन नमूना है, लिहाजा में चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे।
तो कोशिश यही करें और कामयाबी भी इसी के अंदर है। लेकिन जिस तरह इन्होंने बोला कि जो मैं एक नतीजा सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ये जिस पर स्टक हुए, पैसा भी बहुत कमाया, काम भी गया, मुल्क भी ऐसे आ गए, लेकिन क्या कह रहे हैं कि पैसा तो आया लेकिन जो दुआ मिल रही है इसके अंदर लोगों की जान बचाने में, ये याद रखें, जो एक होता है वाइट कोट और एक होता है ब्लैक कोट, फिर एक वर्दी होती है, इन सब की अपनी एक पहचान है और लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वाइट कोट क्या है? वाइट कोट एक निशानी है कि लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स जो होते हैं, मेल नर्स होते हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जान बचाने वाले, ये इन्होंने एक अहद किया ये पहनते हुए कि हम ये काम करेंगे, इस तरीके से मदद करेंगे। तो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आपके ऊपर भी अगर कोट पहना या नहीं पहना कोई सा भी है, बींग अ मुस्लिम, तो जिम्मेदारी आती नहीं आती एज अ फादर, जो हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं एक बाप होने के, एक दादा होने के, एक नाना होने के, एक भाई होने के, एक शौहर होने के, एक ब्रदर होने के, ऑल दीज थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया एंड कैटेगरीज इन योर लाइफ, क्या आपको पता है कि वो फुलफिल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वी इन अ लॉस, हमें तौबा भी करनी चाहिए, और जो एक तरीके से हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें पूरा करना चाहिए। ये तकाजा है बींग अ मुस्लिम के। आपके एक डॉक्टर होने के तकाजे अलग हैं, एक वकील होने के तकाजे अलग हैं, लेकिन सबसे पहले एक मुसलमान होने के जो तकाजे हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। आखिर में कोई बात, कोई मैसेज देना चाहते हैं?
मैसेज में तो ये है कि बस अल्लाह के रास्ते पे चलो, दावत इस्लामी का हाथ थाम लो, तो उसमें बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। जो हम मुल्क में रह रहे हैं, अभी बच्चों को देख रहे हैं 12-15 साल के बच्चे, सो मेरा सोचना और मानना यही है, और मेरी वही ये स्ट्रांग फीलिंग है कि हम लोग सब अल्लाह की राह पे चले, दावत इस्लामी का हाथ थाम ले और अपनी आखिरत सही बना ले, और बच्चों की फ्यूचर लाइफ अच्छे से बना ले।
चले माशा, खालिद भाई आप क्या फरमाएंगे?
जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए ना तो ये खुद इंडिया से तशरीफ लाए हैं, गोया कि इनके जो बैकग्राउंड में बचपन में कोई ऐसी तरबियत थी कि इनको पता था कि अच्छाई बुराई की पहचान क्या है, इस्लाम के ऊपर चलने के फवायद क्या है। नहीं, लेकिन वो जमीर जागा कब? जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए। जब मदनी माहौल में आए तो फिर जरा वही जो तरबियत इन्होंने बचपन में ली हुई थी, अभी तो यानी कि बकौल इनके तकरीबन 5-6 साल हुए हैं, शादी से भी कम, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से
2019-20 के करीब कह रहे हैं।
जी 19-20
के, 5-6 साल, तो कहां लाइफ के बकिया 40 साल, कहां ये 5 साल। तो ये जो अभी इनकी स्ट्रांग फीलिंग है कि इसी तरफ मुझे स्टिक रहना चाहिए और यही सीधा रास्ता है, तो गोया कि ये बचपन की वालदैन ने जो तरबियत की हुई थी तो अभी तक जमीर जो है ना वो पलटा उस तरफ। इससे पता चला कि अगर हम अपने बच्चों की जो दिमाग की सादा तख्ती है ना, शुरू से अगर इस्लाम के नकूश उसके ऊपर नकश कर देंगे ना, तो कहीं भी अगर वो अल्लाह ना करे भटक गए ना रास्ते से, तो कभी ना कभी दिल में चोट लगी तो वापस आ सकते हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत करें, और हदीस पाक का भी मफहूम है कि वालदैन का अपनी औलाद के लिए सबसे जो बेहतरीन गिफ्ट है ना वो अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत है।
सुभान अल्लाह जी, नतीजा क्या निकला आप लोग भी निकालें, और हमारी तरफ से तो यही है कि जैसे अभी खालिद भाई फरमा रहे थे, और ये भी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तरबियत जो होती है ना वो बड़ा असर रखती है, बच्चों की तरबियत हो या बड़ों की तरबियत हो, आप जिस एज के अंदर भी, सीखने का मरहला सबके लिए। जब वालदैन की तरबियत से बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, टीचर बन सकता है, बड़ा जो है वो जज बन सकता है, तो वालदैन की तरबियत से ही एक अच्छा आशिक रसूल भी बन सकता है, 5 वक्त नमाजी भी बन सकता है, हाफिज़ और आलिम भी बन सकता है, और ऐसा बन सकता है जो लोगों के काम आने वाला हो। तो इसलिए हमेशा तरबियत की तरफ होना चाहिए, और वो काम करें जिससे लोग आपको दुआएं दें। पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन दुआएं वो है, खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको लोग खुद से दुआएं देते हैं। तो अल्लाह पाक आज के इस सिलसिले को कबूल फरमाए। आप जहाँ कहीं भी हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लुक आफ्टर योर सेल्फ, और देखते रहिए बुजुर्गों का मदनी चैनल। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।